मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। फ्रेंड्स, मुख्य विषय के बारे में मैं अभी कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हूं। पहले जो दूसरी खबरें हैं उन्हें देख लेते हैं, इसके बाद फिर मुख्य विषय पर आएंगे। आज के अखबारों में आपने खूब पढ़ा भी होगा और कल चैनल्स पर, रेडियो न्यूज़ पर अग्निपथ योजना की खूब चर्चा हुई है, लेकिन अभी मैं इसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं, अंत में इसकी चर्चा करूंगा। इससे पहले आइए जो दो छोटी छोटी खबरें हैं उन पर थोड़ी सी एक निगाह मार लेते हैं। और खासकर अब इस तरह की खबरों को मैंने इसलिए शामिल करना शुरू किया है क्योंकि इस बार जो एग्जामिनेशन का पेपर आया है प्री का, उसके चरित्र में मुझे एक बारीक बदलाव सा दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं कुछ अब नई चीज़ों को इसमें शामिल करने जा रहा हूं। लेकिन एक बात मैं पहले से आप सबको बताना चाहूंगा कि मैं जिन चीज़ों को शामिल करने जा रहा हूं, प्लीज़ उसको लेकर के अपने दिमाग पर कोई दबाव मत बनाएं कि अरे हम अखबार पढ़ेंगे तो हमें इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, हम कैसे इन चीज़ों को समेट पाएंगे, कितनी चीज़ें हम याद रख पाएंगे। बिल्कुल नहीं। देखिए, जो सिविल सर्वेंट जो होता है वो बेसिकली एक सतर्क मस्तिष्क वाला होना चाहिए। उसके दिमाग में ढेर सारी चीज़ें नहीं हैं, वो याद नहीं करता है, वो रटने वाला प्राणी नहीं होता है, लेकिन अपने आसपास की जो चीज़ें, जो घटनाएं हो रही हैं, उन सब के प्रति वो बहुत सतर्क होता है। सतर्क होने का मतलब क्या है? सतर्क होने का मतलब ये है कि जो घटनाएं घट रही हैं आप उनको देखते हैं, तर्कपूर्वक उन्हें सोचते हैं, विचार करते हैं और फिर भूल जाते हैं। जरूरत पड़ने पर वे चीजें फिर से आपके दिमाग में आती हैं, इसलिए आती हैं क्योंकि आप सतर्क थे। आप यदि सीधे किसी घटना को आंखों से देख रहे हैं, ठीक है, आपके दिमाग में वो घटनाएं आ रही हैं लेकिन रेखांकित नहीं हो रही हैं। कुछ दिनों के बाद आप उसे भूल जाएंगे, याद करने की कोशिश भी करेंगे तो शायद याद न आए। लेकिन यदि आप सतर्क होते हैं तो उसी घटना को देखते तो आंखों से ही हैं लेकिन अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करते हैं। तर्क शब्द है ना, तर्कपूर्वक उसके बारे में सोचते हैं। तो अगर आपने उसके बारे में सोचने में थोड़ा भी वक्त लगा दिया तो इसका मतलब है कि वो जो घटना है या वो जो समाचार है वो गाढ़े रंग का हो जाता है, या यूं कह लीजिए कि आपके दिमाग में अंडरलाइन हो जाता है। जब भी जरूरत पड़ेगी वह घटना आपके सामने हाथ जोड़कर, हाथ बांधकर मौजूद हो जाएगी कि आका बताइए क्या आदेश है। इसे ही कहते हैं सतर्कता। तो दोस्तों, मैं जिन छोटी छोटी घटनाओं की यहां चर्चा कर रहा हूं उनको लेकर के आप बहुत ज्यादा परेशान न हों। मुझे ऐसा लगता है कि यदि आप थोड़ी सी ईमानदारी के साथ सतर्कता पूर्वक डेली ऑडियो लेक्चर सुनना शुरू कर देंगे, न्यूज सुनना शुरू कर देंगे, दूरदर्शन के समाचार देखना शुरू कर देंगे, थोड़ा सा ईमानदारी के साथ अखबार के साथ समय गुजारने लगेंगे तो आपका काम चल जाएगा। बहुत आतंकित प्लीज मत होइए। आपने कल के रेडियो न्यूज सुनी होगी, रेडियो न्यूज में आपको एक दो बातें मिली होंगी। इसमें से जो एक खबर है ये तो इससे एक दिन पुरानी भी खबर है, उसकी चर्चा की गई थी, लेकिन कल वह खबर पूरी हो गई। और खबर यह है कि भगवान बुद्ध के जो चार पवित्र अवशेष हैं वे मंगोलिया ले जाए गए हैं, और मंगोलिया में एक मठ है जिसका नाम है गंदन मठ। गंदन मठ में एक मंदिर है, बट्स गांव मंदिर, वहां वे पवित्र अवशेष रखे गए हैं। अब आप देखिए कि ये गौतम बुद्ध से जुड़ा हुआ विषय है, मामला है, घटना है आप कह लीजिए तो, और बौद्ध दर्शन आपके सिलेबस में है। ये एक प्रकार से संस्कृति का भी हिस्सा है, दर्शन का भी हिस्सा है, और इंटरनेशनल रिलेशन का भी ये हिस्सा है, इंटरनेशनल रिलेशन का भी हिस्सा है, क्योंकि मंगोलिया है ना, मंगोलिया में ये पवित्र अवशेष रखे गए हैं। इसका मतलब है मंगोलिया में बौद्ध धर्म प्रचलित है और जो ये आधार होते हैं इतिहास के, संस्कृति के, दर्शन के, धर्म के, ये इंटरनेशनल रिलेशन को मजबूत बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो बस एक बार आपने सुन लिया, देश का नाम है मंगोलिया, मठ का नाम है गंदन मठ, मंदिर का नाम बट्स गांव मंदिर, और वहां बुद्ध के पवित्र अवशेष ले जाए गए हैं। बस इतना सुन लिया और अब आप उसे भूल जाइए। हो सकता है कि आप जब मैगजीन लेंगे तो फिर आप उसे दोहराएंगे, कोई बात नहीं, आप उसे उस समय देख लीजिएगा तो इतना ही आपके लिए सफिशियंट होता है। ठीक इसी तरह से एक और आपने खबर सुनी होगी, संत तुकाराम से संबंधित, रेडियो न्यूज में थी, संत तुकाराम से संबंधित है ना, एक मंदिर की शुरुआत की गई है। उसमें एक शब्द आया था अभंग, अभंग वीर का सावरकर जी के संदर्भ में, मैं पूरी बात नहीं बता रहा हूँ आपको, है ना, आप अपने दिमाग को दौड़ाइए कि आपने न्यूज़ सुना तो ध्यान दिया कि नहीं दिया, कोई बात नहीं, अगर ध्यान नहीं भी दिया तो धीरे धीरे अगर आप सतर्कता के साथ डेली ऑडियो लेक्चर सुनने लगेंगे तो आप ध्यान देने लगेंगे, उसमें कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। अभंग, तो ये अभंग बेसिकली क्या है, इस तरह के प्रश्न पूछे भी जा सकते हैं। तो अभंग जो है, जो हमारे संत तुकाराम हैं उनकी रचनाएं हैं, उनके द्वारा रचे गए पद हैं जिन्हें अभंग कहा जाता है, और इस अभंग में वे जो भगवान विट्ठल हैं उनकी प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तो उन्हें कहा जाता है अभंग। अब आप देखिए, वो न्यूज़ का एक हिस्सा है, प्री में पूछा जा सकता है, अगर आप थोड़े से सतर्क होंगे तो आपके लिए ये उत्तर बहुत आसान हो जाएगा। ठीक इसी तरह से आज के अखबारों में, ये न्यूज़ में नहीं है, फ्रांस की एक कंपनी का नाम आया है टोटल एनर्जीज, टोटल एनर्जीज, खासकर जब इस तरह की बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं और उनका प्राइवेट किसी कंपनी से टाई अप होता है तो सरकारी न्यूज़ में आपको सुनने को नहीं मिलेगी, मतलब ऑफिशियल न्यूज़ जिसे हम कहते हैं उसमें सुनने को नहीं मिलेगी, लेकिन अखबारों में है और बिजनेस स्टैंडर्ड ने उसे फ्रंट पेज पर लिया है। अब ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, कंपनियाँ तो बहुत होती हैं, दो कारणों से इम्पॉर्टेंट है। पहली बात तो यह है कि ये फ्रांस की बहुत बड़ी ऊर्जा से संबंधित कंपनी, और ऊर्जा बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरी बात यह है कि इसने भारत के हमारे जो अदानी समूह की जो कंपनी है उसके साथ टाई अप किया है, उसमें जो उनकी हरित हाइड्रोजन वाली जो कंपनी है, जो ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करेगी, उसमें 25% इन्वेस्ट किया है। तो ऊर्जा और इसके बाद हरित ऊर्जा हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उसमें फ्रांस की जो कंपनी है टोटल एनर्जी उसने निवेश किया है, तो इसीलिए जो टोटल एनर्जीज जो कंपनी, एनर्जीज के नाम से आपको पता लग जाएगा कि भाई ये किस क्षेत्र की कंपनी होगी, तो सीधी सी बात है कि ऊर्जा की कंपनी है, लेकिन टोटल किस देश की कंपनी है, वो फ्रांस की कंपनी है, बस इतना थोड़ा सा सुन लीजिए। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि इस बात का के प्रति हमें सतर्क रहना होगा। दोस्तों, अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, और वो है अग्निपथ प्रवेश योजना। कल दूरदर्शन में बहुत विस्तार के साथ इस पर बताया गया है, रेडियो न्यूज में भी इसकी चर्चा रही है और अखबारों में भी बहुत विस्तार के साथ इसके बारे में लिखा गया है, आपने अखबारों में पढ़ा भी होगा। दोस्तों, ये जो अग्निपथ जो प्रवेश योजना है, इनफैक्ट इसके दो एंगल हैं। पहला एंगल रोजगार से संबंधित एंगल है, आप देख रहे हैं कि भारत में कैसे जो रोजगार बेरोजगारी की दर है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है, सरकार भी इस बात को लेकर के चिंतित है, एक तरफ महंगाई बढ़ रही है दूसरी तरफ बेरोजगारी बढ़ रही है, तो ये किसी भी समाज के लिए बहुत ही खतरनाक संकेत होती है स्थितियों को लेकर के, यहाँ तक कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को भी लेकर के। तो सरकार का ये दायित्व है कि वो रोजगार के लिए कुछ कदम उठाए। तो कल ही एक साथ आपने देखा होगा कि दो तरह के कदमों की घोषणा की गई है। पहले घोषणा के अंतर्गत जो हमारे केंद्र सरकार के जो अलग अलग मंत्रालय हैं वे डेढ़ सालों में, मतलब टाइम फिक्स कर दिया गया है कि डेढ़ सालों में लगभग 10 लाख भर्तियां करेंगे, डेढ़ सालों में लगभग 10 लाख भर्तियां। यदि आप पढ़ने के मामले में थोड़े से सतर्क हैं तो अब आपको ये भी पढ़ने को मिल जाएगा अखबारों में, भले ही सभी में न दिया हो लेकिन ज़्यादातर अखबारों में दिया हुआ है कि जो केंद्र सरकार में जो टोटल जो पदों की संख्या है वो लगभग 39 लाख या कह लीजिए 40 लाख पद हैं, स्वीकृत जो पद हैं वो लगभग शब्द का इस्तेमाल करने के बाद आप थोड़े से सेफ हो जाते हैं, 40 लाख पद हैं, ठीक है। उनमें से जो अभी हमारे जो केंद्रीय कर्मचारी हैं, आप कह लीजिए टोटल अधिकारी कर्मचारी, वो 34.6 लाख हैं, आप इसे चाहें तो लगभग आप कह लीजिए कि 35 लाख लोग हैं। थोड़े से डेटा में आपको डिफरेंस भी पढ़ने को मिल जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम चलिए मोटे तौर पर हम इसे राउंड अप कर देते हैं कि कुल जो स्वीकृत पद हैं वो 40 लाख हैं और उसमें से लगभग 9 लाख पद खाली हैं। इसके बारे में डेटा अलग अलग है, कुछ स्वीकृत पद 41 लाख भी लिख रहे हैं लेकिन उसमें भटकने की बात नहीं है। तो अब ये जो खाली पद हैं इसके लिए सरकार ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स को, मिनिस्ट्रीज को, कि आप उन्हें आइडेंटिफाई करें और डेढ़ साल के अंदर इन पदों को भरें। तो मोटे तौर पर तो 10 लाख पद यहां आपको रिक्तियां दिखाई दे रही हैं, यहां युवाओं को रोजगार मिलेगा। और दूसरी जो योजना घोषित की गई है वो है अग्निपथ प्रवेश योजना। मैं चाहूँगा कि इस अग्निपथ प्रवेश योजना के बारे में, या सीधे आप अग्निपथ योजना भी कह सकते हैं, इसके बारे में आप थोड़ा सा ध्यान से आज के अखबारों में पढ़ लें, खासकर इसकी जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको पता लग जाएं। डेफिनेटली इसको लेकर के एडिटोरियल कमेंट्स आएंगे, एडिटोरियल आर्टिकल्स भी आपको पढ़ने को मिलेंगे, वहाँ से फिर आप अपनी आलोचनात्मक समीक्षात्मक जो एक पद्धति होनी चाहिए उसके आधार पर आप तैयारी कर सकते हैं, और हम लोग इस पर बात भी करते रहेंगे। लेकिन सबसे ज़रूरी यह है कि पहले आपको इसका ढांचा पता लगे कि इस योजना की संरचना क्या है। कुछ बातें जो वक्त को देखते हुए मुझे अवसर मिल रहा है मैं आपके सामने रखूँगा। पहली बात तो है कि इसके तहत सेना के जो हमारे तीन विंग होते हैं, सेना, जल सेना और वायुसेना, इन तीनों में भर्तियाँ होंगी, राइट? ये भर्तियां हर साल 46,000 नौजवानों के लिए होंगी जिनका नाम होगा अग्निवीर, और चार वर्ष के लिए इन्हें भर्ती किया जाएगा। तो चार वर्ष के बाद क्या होगा? हर साल 46,000 भर्ती होगी, चार साल तक इस तरह की भर्तियां होती रहेंगी, और जो पहले साल आप समझ लीजिए कि जिनकी भर्ती हुई है, चौथे साल तक वो चार साल उनके पूरे हो जाएंगे। अब इसमें से जितनों की भी भर्ती हुई है, जो 46,000 लोग होंगे, युवा होंगे, इनमें से 25% को परमानेंट कर दिया जाएगा, यानी कि उनको ये कहा है कि आप सेवा में कंटिन्यू कीजिए। जो बेस्ट कैडेट होंगे आप कह लीजिए, उन्हें कहा जाएगा कि आप कंटिन्यू कीजिए, और जो 75% होंगे, इन 75% को वहां से हटा दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। आपके मन में संकट पैदा हो सकता है कि इनको निकाल दिया जाएगा तो फिर अब क्या होगा इनका? तो सरकार ये मान करके चल रही है कि ये जो युवा निकाले जाएंगे इन्हें प्राइवेट सेक्टर वाले बहुत ज़्यादा प्रीफर करेंगे, क्योंकि देखिए जो आर्मी में एक बार सर्विस कर लेते हैं, चार साल की जो होगी, तो बकायदे उसमें 6 महीने का ट्रेनिंग पीरियड भी है, बकायदे उन्हें उनमें डिसिप्लिन की भावना आएगी, उनमें सुरक्षा की भावना आएगी, उनमें आपात स्थितियों से निपटने की भावना आएगी, एक साथ मिलकर काम करने की भावना आएगी, सेवा की भावना तो आएगी, डिसिप्लिन की भावना पैदा होगी। तो मुझे लगता है कि करेक्टर निर्माण का बहुत ज़बरदस्त काम इन चार सालों में हो जाएगा। और ये इनकी उम्र क्या है, बहुत ही कम उम्र में इनकी खासकर अग्निवीर के रूप में भर्ती होनी है। जो मिनिमम एज रखी गई है वो है 17.5 साल, और अधिक से अधिक जो रखी गई है 21 साल। तो अगर हम 21 साल में भी माने कि कोई युवा भर्ती होगा तो 25 साल में एक तरह से वो 4 साल में ट्रेंड होकर के वो बाहर आ जाएगा, और जब ये ट्रेंड होकर हो रहा होगा या 4 साल में जब नौकरी कर रहा होगा तो बकायदे इनको सैलरी मिलेगी। पहले साल इनको 30,000 रुपये मिलेगी, चौथे साल में बढ़ करके वो चौथे साल तक वो 40,000 हो जाएगी। इस बीच में जो इनकी सैलरी मिलेगी उसका कुछ हिस्सा बकायदे सरकार काटेगी, और फिर सरकार उसमें अपनी तरफ से धन मिला करके जब 4 साल के बाद ये रिटायर होंगे तो इन्हें बकायदे 11,71,000 रुपये भी मिलेंगे, एक तरह से मोटे तौर पर कह लीजिए 12,50,000 रुपये मिलेंगे। तो एक राशि भी इनके हाथ में होगी, तो इस तरीके से आगे कुछ करने के लिए भी इन्हें बहुत बड़ा सहारा मिल जाएगा। तो दोस्तों, जो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें थी इसकी संरचना को लेकर के वो मैंने आपके सामने रखी हैं। हाँ, ये जरूर कहूंगा कि मैं इस टॉपिक पर आप थोड़े से और भी अखबारों में अच्छी तरह से टटोल करके कुछ और पॉइंट्स भी नोट कर लें। दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूँ, देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूँ, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं, विजय सोनी अहमदाबाद से, वनमाली बर्मन गुवाहाटी असम से। वनमाली, आपने बहुत अच्छा मेल लिखा है, बहुत बहुत आभार। और तीसरी मित्र हैं शैली शर्मा, आप सबके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।